डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट साहित्य, व्याख्यान 17, 1 कुरिन्थियों, आध्यात्मिक उपहार। 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं, जो अपने नए नियम के इतिहास और साहित्य पाठ्यक्रम 1 कुरिन्थियों और आध्यात्मिक उपहारों पर व्याख्यान 17 में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और शुरुआत करें। हमारे शुरू होने से पहले घोषणा का एक आइटम यह है कि आपकी पहली प्रश्नोत्तरी और परीक्षा दोनों को वर्गीकृत किया गया है और शायद आपकी दूसरी प्रश्नोत्तरी। अब इसे ब्लैकबोर्ड पर डालने की प्रक्रिया चल रही है, तो उम्मीद है कि अगले 1 या 2 दिन में आपके अंक बढ़ जाएंगे, इसलिए बीच बीच में ब्लैकबोर्ड चेक करते रहें। आपको परीक्षाएं और प्रश्नोत्तरी भी वापस मिल जाएंगी ताकि आप वास्तव में उन्हें देख सकें, लेकिन आपके बॉक्स में वापस रखे जाने से पहले वे ब्लैकबोर्ड पर होंगे, तो बस उन्हें देखते रहें और उम्मीद है अगले 2 दिनों के भीतर आप सभी क्विज और परीक्षाओं के लिए अपने अंकों से परिचित हो जाएंगे और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब से आप स्कोर यहीं पा सकते हैं। ठीक है, आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। तब हम अंतिम कक्षा अवधि में थे, 1 कुरिन्थियों के बारे में बात कर रहे थे, 1 कुरिन्थियों के भीतर कई ग्रंथों को देख रहे थे और एक प्रशंसनीय पृष्ठभूमि और परिदृश्य को फिर से बनाने का प्रयास कर रहे थे कि लेखक किस मुद्दे को संबोधित कर रहा था और लेखक उस मुद्दे को कैसे संबोधित करता है वगैरह। और इसलिए हम 1 कुरिन्थियों के दूसरे खंड को देखेंगे, वास्तव में 2 और खंड, उनमें से एक को थोड़ा अधिक विस्तार से, एक को आज थोड़ा और संक्षेप में। लेकिन आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें। पिता, हमारे प्रति आपकी वफादारी के लिए, हमें भावनात्मक, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से बनाए रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि हम अपनी सारी क्षमताओं को सोचने और विश्लेषण करने और सही प्रश्न पूछने की अपनी क्षमताओं को आपके वचन का अध्ययन करने में केंद्रित करेंगे। और जैसा कि हम 1 कुरिन्थियों को देखते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि हम न केवल इसका विश्लेषण कर पाएंगे और इसे इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रकाश में समझ पाएंगे, बल्कि हम इसे आज के हमारे संदर्भ के प्रकाश में भी समझ पाएंगे और यह कैसे जारी है आज अपने लोगों के लिए अपने वचन के रूप में हमसे बात करें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, इसलिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 की हमारी चर्चा को समाप्त करने के लिए हमने 1 कुरिन्थियों 11 के दूसरे भाग में से कुछ को देखा, जहां पॉल प्रभु भोज या यूचरिस्ट के मुद्दे को संबोधित करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या हैं, इसे कॉल करने की आदत है। मैंने पाठ के उस भाग को समझने का तरीका सुझाया, खासकर जब हम इसके अंत में दिए गए आदेशों पर आते हैं, जब पॉल उन्हें खुद की जांच करने और अयोग्य तरीके से प्रभु के भोज में भाग न लेने के लिए कहते हैं, और हम देखेंगे संक्षेप में एक अन्य आदेश में क्या हमें उस संदर्भ को समझने की आवश्यकता है जिसने इसे जन्म दिया, और वह यह है कि हमने कहा कि समान सामाजिक आर्थिक भेद और स्थिति, सामाजिक स्थिति, अभिजात वर्ग, अमीर और के बीच का यह पूरा मुद्दा बाकी सभी लोग अब चर्च में आ गए थे और पॉल जिस बात से इतना परेशान था वह यह थी कि वे भोजन के संदर्भ में उन सामाजिक भेदों को कायम रख रहे थे जिन्हें ईसा मसीह के एक शरीर के रूप में उनके मिलन और उनकी एकता का जश्न मनाना चाहिए था। भगवान के लोग सुसमाचार के प्रकाश में, क्रूस के प्रकाश में, उनके लिए यीशु की मृत्यु, मसीह में उनके मिलन के प्रकाश में प्रभु का भोज इसका संकेत होना चाहिए था, इसकी एक अभिव्यक्ति। इसके बजाय वे धर्मनिरपेक्ष कोरिंथ में मौजूद स्थिति के चल रहे सामाजिक आर्थिक भेदों की अभिव्यक्ति के रूप में लॉर्ड्स सपर का उपयोग कर रहे थे जो अब फिर से चर्च में घुसपैठ कर चुका है, और इसलिए पॉल ने उन्हें बताया, हमने कहा कि खुद की जांच करने का आदेश था आपके द्वारा किए गए सभी पापों के बारे में सोचने और उन्हें स्वीकार करने का आदेश नहीं। यदि आप कुछ पाप भूल गए हैं और उन सभी को स्वीकार नहीं किया है तो अयोग्य तरीके से प्रभु का भोज लेना इसे नहीं माना जाएगा। इसके बजाय उन्हें विशिष्ट स्थिति पर निर्देशित किया गया था। प्रभु भोज में अयोग्य तरीके से भाग लेना एक तरह से विभाजन को बढ़ावा देना था। ऐसे भोजन का उपयोग करना जो परमेश्वर के लोगों की एकता को बढ़ावा देता है या व्यक्त करता है, इसे इस तरह से उपयोग करना जो कोरिंथियन चर्च में विभाजन और सामाजिक आर्थिक विभाजन को बढ़ावा देता है और कायम रखता है, पॉल के लिए अकल्पनीय था। और इसलिए वह कहते हैं, अपने आप की जांच करें, अर्थात यह सुनिश्चित करें कि आप प्रभु भोज के महत्व को समझते हैं और आप इसका उपयोग इस तरह से कर रहे हैं कि चर्च में विभाजन पैदा न हो और उसे बढ़ावा न मिले। और मैं आज सुझाव दूंगा कि यही बात लागू होती है कि प्राथमिक पाप जिसे किसी को महसूस करने और जांचने की आवश्यकता है वह है प्रभु भोज में भाग लेना जब हमारा मसीह के शरीर में किसी और के साथ विवाद और विभाजन होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यही वह प्राथमिक समस्या थी जिससे पॉल इतना परेशान था। तो श्लोक अध्याय के अंत में श्लोक 33 फिर कहता है, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम भोजन करने के लिए एक साथ आओ तो एक दूसरे की प्रतीक्षा करो। यानी फिर से समस्या यह थी कि सबसे अधिक संभावना यह थी कि अमीर सदस्य पहले चर्च पहुंचते थे, शायद इसलिए कि उन पर काम करने की आवश्यकता कम होती थी, और गरीब सदस्य जिन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था वे बाद में चर्च पहुंचते थे और वास्तव में चर्च में होते थे। घर के चर्च में एक अलग कमरा और अलग और कम भोजन भी परोसा जाएगा। और इसलिए पॉल अब कहता है, इसके बजाय एक दूसरे की प्रतीक्षा करें, अर्थात यह सुनिश्चित करें कि आप मसीह में अपनी एकता की अभिव्यक्ति के रूप में इस भोजन को एक साथ खाएं। धर्मनिरपेक्ष कोरिंथ में पाए जाने वाले इन सामाजिक भेदों को बनाए रखने के साधन के रूप में अब इस भोजन का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए इसके बजाय एक दूसरे की प्रतीक्षा करें और मसीह के शरीर के सदस्यों के रूप में अपनी समानता व्यक्त करते हुए इस भोजन को एक साथ खाएं, जिसके बारे में पॉल मसीह के शरीर की इस छवि और एकता के बारे में बात करेंगे। पॉल अध्याय 12 और 14 में इसके बारे में बात करना जारी रखेगा। ठीक है, इसलिए अध्याय 12 से 14 हमें अगले प्रमुख पाठ पर ले आते हैं जिसके बारे में मैं संक्षेप में बात करना चाहता हूँ। ध्यान दें कि यह अध्याय 12 के श्लोक 1 से कैसे शुरू होता है, अब आध्यात्मिक उपहारों के संबंध में। दरअसल हमने देखा है कि पॉल अक्सर परिचय देते हैं जब वह उन विभिन्न समस्याओं से निपटना शुरू करते हैं जो उन्हें कोरिंथियन चर्च में मौखिक रूप से या लिखित रूप से बताई गई हैं, तो वह अक्सर इस वाक्यांश के माध्यम से संकेत देते हैं, अब संबंधित मूर्तियों को चढ़ाया जाने वाला मांस, अब आध्यात्मिक उपहारों के संबंध में, अब उन मामलों के बारे में जिनके बारे में आपने लिखा है, आदि आदि। इसलिए अब यह एक तरह का संकेत है कि पॉल एक नई समस्या पेश कर रहा है जिसे वह अब संबोधित करेगा। हालांकि यह समस्या अध्याय 11 के समान है क्योंकि ये दोनों चर्च के संदर्भ में घटित होते हैं जब यह पूजा के लिए इकट्ठा होता है। वास्तव में पॉल एक कुरिंथियों में अधिकांश मुद्दों से निपटता है। वह घर पर वे क्या करते हैं इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है, हालांकि वह इसके बारे में चिंतित है, वह घर पर या कार्यस्थल पर उनके जीवन को इतना संबोधित नहीं कर रहा है, लेकिन वह इस बात पर ध्यान दे रहा है कि जब चर्च एक साथ आता है तो क्या करता है। और एक कुरिंथियों का पूरा अध्याय 11 उन समस्याओं से संबंधित है जो तब उभरती हैं जब कोरिंथियन चर्च अपनी पूजा के लिए एक साथ आता है। अध्याय 12 से 14 के बारे में भी यही सच है। 12 से 14 उस समस्या का समाधान करता है जो तब उभरती है जब कुरिंथवासी पूजा के लिए एक साथ मिलते हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि यह समस्या अध्याय 11 के समान है, यह एक ऐसी समस्या है जो धर्मनिरपेक्ष कोरिंथियन समाज में कुछ आदर्शों या मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है, और अब इसने चर्च में घुसपैठ कर ली है और कई समस्याएं पैदा कर दी हैं जो पॉल अब हैं संबोधित करने जा रहा हूं। तो अध्याय 12 से 14 में मुझे इसका पहला भाग पढ़ने दीजिए। अध्याय 12 से 14 में एक सामान्य व्यापक विषय चर्च और उसके आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग है। हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और समस्या क्या थी, लेकिन अध्याय 12 से शुरू करते हुए अब आध्यात्मिक उपहारों के संबंध में, भाइयों और बहनों, मैं नहीं चाहता कि आप अनभिज्ञ रहें। तुम जानते हो कि जब तुम मूर्ति पूजक थे तो तुम्हें बहकाया गया और उन मूर्तों के पास ले गए जो बोल नहीं सकती थीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि ईश्वर की आत्मा से बोलने वाला कोई भी व्यक्ति कभी नहीं कहता कि यीशु को शापित होने दो, और पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। अब विभिन्न प्रकार के उपहार हैं, लेकिन एक ही भावना है, और विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, लेकिन एक ही भगवान है, और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, लेकिन यह एक ही भगवान है जो उन सभी को और सभी को सक्रिय करता है। प्रत्येक को सामान्य भलाई की भावना की अभिव्यक्ति दी गई है। किसी को आत्मा के द्वारा ज्ञान का उच्चारण दिया जाता है, किसी को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान का उच्चारण दिया जाता है, किसी को विश्वास उसी आत्मा के द्वारा विश्वास का उपहार दिया जाता है, किसी को उसी आत्मा के द्वारा उपचार का उपहार दिया जाता है, किसी को चमत्कार करना, किसी को भविष्यवाणी करना, किसी को आत्माओं की पहचान, किसी को विभिन्न प्रकार की भाषाएं और किसी को भाषा की व्याख्या। ये सभी एक ही आत्मा द्वारा कार्यित या सक्रिय होते हैं, जो आत्मा की पसंद के अनुसार प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से आवंटित करता है। अब पॉल क्या कर रहा है? सबसे पहले हमें यह पूछने की जरूरत है कि पॉल किस समस्या का समाधान कर रहा है। उन्हें बैठकर आध्यात्मिक उपहारों के बारे में बात क्यों करनी पड़ी? सबसे पहले मैं इस संदर्भ के अनुसार एक आध्यात्मिक उपहार को किसी भी अलौकिक या प्राकृतिक क्षमता के रूप में परिभाषित करूंगा जो पवित्र आत्मा द्वारा सक्रिय है और पूरे चर्च के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। और इसलिए पॉल चिंतित है कि कुरिन्थियों ने स्पष्ट रूप से व्यायाम किया है और प्राप्त किया है और इन उपहारों से अवगत हैं जिन्हें पवित्र आत्मा ने चर्च के विकास और निर्माण के लिए उन पर डाला है। फिर भी पॉल को यह भी पता है कि उन्हें प्राप्त किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया गया। अब जब आप अध्याय 12 से 14 पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि यही समस्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार फिर कोरिंथियन स्थिति में इस अंतर को और बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक उपहारों का उपयोग कर रहे थे। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो हमने कई मुद्दों में देखी है, संरक्षक ग्राहक संबंध, नेताओं के बीच अनुसरण करने की होड़ और उनकी सामाजिक स्थिति पर घमंड आदि आदि, अमीर अभिजात वर्ग और के बीच विभाजन गरीब। अब यह चर्च में घुसपैठ कर चुका था और यह आध्यात्मिक उपहारों के बारे में उनके दृष्टिकोण को भी प्रभावित कर रहा था, जो कुछ इस तरह था। कुरिन्थियों में से कुछ संभवतः अभिजात्य, सामाजिक रूप से कुलीन और समाज के धनी लोग अपनी विशिष्ट धनी सामाजिक स्थिति को कुछ उपहारों के साथ जोड़ रहे थे, जिनके बारे में उनका मानना था कि यह उस स्थिति के साथ मेल खाता है। मुख्य रूप से अन्य भाषाओं में बोलने की उनकी क्षमता। पहली शताब्दी में अन्य भाषाओं में बोलने की क्षमता एक अलौकिक उपहार थी कि पवित्र आत्मा के तहत कोई भी एक भाषा में बात कर सकता था, या तो एक अलग भाषा या कुछ लोग स्वर्गीय श्रेष्ठ भाषा भी कह सकते थे, जो किसी भी मानव भाषा से पहचानी नहीं जा सकती थी। लेकिन पहले कभी उस भाषा का अध्ययन या सीखे बिना ऐसा करने की क्षमता। अब कुछ कुरिन्थवासी भाषा के इस उपहार अलौकिक रूप से एक अलग भाषा में बोलने की क्षमता को बढ़ावा दे रहे थे। वे इसे अपनी आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट स्थिति के संकेत के रूप में प्रचारित कर रहे थे, और बाकी सभी लोग स्पष्ट रूप से कमतर स्थिति में थे। यह इस तथ्य से प्रदर्शित होता है कि उनके पास वह उपहार नहीं था। अब इसका एक कारण यह समझना है कि कोरिंथियन और ईसाई धर्म उस समय के एकमात्र धर्म नहीं थे जिनमें जीभ जैसी घटना होती थी। किसी अन्य भाषा में बोलना या कोई आनंदमय प्रकार का भाषण। दिलचस्प बात यह है कि अन्य धर्मों में भी भाषण का आनंदमय प्रकार था जहां कोई व्यक्ति फिर से एक अलग भाषा या भाषा में बोलता था। और दिलचस्प बात यह है कि कई अन्य धर्म इसे सामाजिक रूप से कुलीन स्थिति से जोड़ते हैं। तो आप कोरिंथियंस के बारे में सोचते हैं जो शायद एक ऐसी स्थिति से बाहर आ रहे थे, उनमें से कई इन विभिन्न बुतपरस्त धर्मों से संबंधित थे, जो ऐसे धर्मों से संबंधित थे जहां अन्य भाषाएं, एक भाषा में बोलना या उत्साहपूर्ण भाषण एक निश्चित सामाजिक स्थिति से जुड़ा हुआ था। अब इसे उनके नए ईसाई धर्म में स्थानांतरित किया जा रहा था, और इसलिए चर्च में फिर से संभवतः चर्च के अधिक कुलीन, सामाजिक रूप से कुलीन और धनी सदस्य अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक और सामाजिक स्थिति के संकेत के रूप में अन्य भाषाओं में बोलने की अपनी क्षमता पर घमंड कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने शायद अन्य बुतपरस्त धर्मों में सीखा था। अब इसे ईसाई धर्म में शामिल कर लिया गया है, और इसी बात ने पॉल को इतना परेशान कर दिया है, और यही वह रवैया और समस्या है जिससे वह लड़ने की कोशिश करेगा। तो पॉल जिस तरह से अध्याय 12 से 14 में प्रदर्शित करता है, पॉल मूल रूप से यह प्रदर्शित करने जा रहा है कि कोई भी उपहार प्रकट नहीं होता है, और अंग्रेजी अनुवाद पर ध्यान दें जिसे इन उपहारों को आत्मा की अभिव्यक्ति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी उपहार इस बात का संकेत नहीं है कि किसी के पास किसी भी अन्य से अधिक पवित्र आत्मा है। इसीलिए पॉल ने इसका उल्लेख किया है, क्या आपने उपहारों की वह सूची देखी? पॉल कहते हैं, किसी को आत्मा के माध्यम से ज्ञान का उच्चारण या भाषण दिया जाता है, किसी को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान दिया जाता है, किसी को विश्वास का उपहार दिया जाता है, किसी को उपचार का उपहार दिया जाता है, आदि आदि। पॉल क्या कर रहा है? वह बस यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जीभ केवल एक संभावित उपहार है और इसका किसी अन्य से बढ़कर कोई गौरवपूर्ण स्थान नहीं है। ये सभी उपहार, चाहे वह उपचार के चमत्कार हो या विश्वास या ज्ञान बोलने की क्षमता या कुछ और, वे सभी समान रूप से आत्मा को प्रकट या दिखाते हैं। तो कोरिंथियंस ने एक उपहार को एक संकेत के रूप में अलग करने या बढ़ाने की हिम्मत कैसे की कि वे किसी तरह आध्यात्मिक रूप से पहुंचे हैं या उनके पास आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से कुलीन स्थिति है। ये सभी उपहार समान रूप से आत्मा को दर्शाते और प्रकट करते हैं। क्या आपने उस सूची के बारे में दूसरी बात पर ध्यान दिया कि पॉल उस सूची में अंतिम उपहार को जीभ के रूप में सूचीबद्ध करता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि फिर से वह वही था जिसे कोरिंथियन अनुपात से बाहर कर रहे थे और ध्यान आकर्षित कर रहे थे, और इसलिए पॉल ने इसे सूची के अंत में रखा क्योंकि फिर से वह खेल के मैदान को समतल कर रहा है। पॉल यह प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है कि फिर से वही ईश्वर और वही पवित्र आत्मा हर उपहार के पीछे समान रूप से हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के पास विश्वास का उपहार है, उसके पास पवित्र आत्मा उस व्यक्ति से कम नहीं है जो अन्य भाषा में बोलता है। जो व्यक्ति अन्य भाषा में बोलता है, उसके पास आतिथ्य सत्कार या अन्य संभावित उपहारों का उपयोग करने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक पवित्र आत्मा नहीं है। तो पॉल कोशिश कर रहा है, कुरिंथियों के पास संभवतः उपहारों का एक प्रकार का पदानुक्रम था जहां फिर से जीभें शीर्ष पर थीं। अब पॉल इसे लेता है और खेल के मैदान को समतल करता है ताकि सभी उपहार समान स्तर पर हों। तो फिर से पॉल का निर्देश अब आपकी आध्यात्मिक स्थिति के संकेत के रूप में कुछ उपहारों को बढ़ावा देना नहीं है। हर किसी के पास समान रूप से आत्मा होती है क्योंकि प्रत्येक उपहार समान रूप से आत्मा को दर्शाता है, चाहे वह कितना भी महत्वहीन या तुच्छ क्यों न दिखाई दे। और इसीलिए पॉल शरीर की कल्पना को भी उजागर करता है। उन्होंने चर्च की तुलना एक निकाय से की जो असामान्य नहीं था। पॉल के लिए यह कोई नई बात नहीं है। यूनानी दुनिया के अन्य लेखकों ने इसकी एकता को व्यक्त करने के लिए विभिन्न संस्थानों और संघों की तुलना एक भौतिक शरीर से की, लेकिन तथ्य यह है कि यह विविधता में भी मौजूद है। तो ध्यान दें कि पॉल क्या कहता है। फिर से वह श्लोक 12 से शुरू करता है। क्योंकि जैसे शरीर, भौतिक शरीर एक है और उसके कई सदस्य हैं, और शरीर के सभी सदस्य हालांकि कई एक शरीर हैं, वैसा ही मसीह के साथ भी है। क्योंकि एक ही आत्मा में हम सबको एक शरीर में बपतिस्मा दिया गया है, यहूदी और यूनानी, गुलाम और आजाद, और हम सभी को एक ही आत्मा पिलाया गया। अब ये सुनो, इसके बाद पॉल इस शरीर चित्रण के बारे में विस्तार से बताएगा। और ध्यान दें कि वह क्या कर रहा है। वह यह दिखाने के लिए समान अवसर देने का प्रयास कर रहा है कि सभी उपहार समान महत्व के हैं। वह कहते हैं, दरअसल शरीर एक सदस्य से नहीं बल्कि कई सदस्यों से मिलकर बना होता है। यदि पैर कहे, क्योंकि मैं हाथ नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, तो इससे वह शरीर का अंग कम नहीं हो जाएगा। और यदि कान कहे, मैं आंख नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, तो इससे कुछ घट न जाएगा। यदि सारा शरीर एक आंख होता तो श्रवण कहां होता। क्या आप देख रहे हैं कि पॉल क्या कर रहा है। वह कह रहा है, कल्पना कीजिए कि यह कितना विचित्र होगा यदि आप एक विशाल नेत्रगोलक या एक विशाल कान से बने हों। यह हास्यास्पद है। और पॉल का पूरा तर्क यह है कि यह आध्यात्मिक क्षेत्र की तुलना में भौतिक क्षेत्र में अधिक सत्य नहीं है। इसलिए कोरिंथियंस के लिए एक उपहार को बढ़ावा देना जो किसी भी तरह से आत्मा को धारण करने का अधिक संकेत देता है, यह कहने के बराबर है कि शरीर एक ऐसा शरीर होना जिसमें सिर्फ एक विशाल नेत्रगोलक या एक कान या एक पैर या ऐसा कुछ हो। शरीर को ठीक से काम करने के लिए सभी अंगों का एक साथ मिलकर काम करना जरूरी है। यद्यपि वे विविध हैं, फिर भी वे एकता में योगदान करते हैं। और इसलिए भौतिक शरीर इस बात का एक आदर्श उदाहरण प्रदान करता है कि पॉल क्या प्राप्त करना चाहता है। ऐसा कोई उपहार नहीं है जो दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण हो। कोरिंथियंस ने जीभ के उपहार को एक संकेत के रूप में बढ़ाने या बढ़ावा देने की हिम्मत कैसे की कि उनमें से कुछ आध्यात्मिक रूप से कुलीन या सामाजिक रूप से कुलीन स्थिति के हैं। वास्तव में ध्यान दें कि वह कैसे शुरू करता है। इससे पहले कि वह कभी भी आध्यात्मिक उपहारों के बारे में बात करें, वह पद 3 में कहते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह कह रहा है कि किसी के पास आत्मा होने का सच्चा प्रमाण अन्य भाषा में बोलना या चमत्कार या कोई अन्य उपहार नहीं है। सच्चा प्रमाण यीशु मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करने की क्षमता है। यह लगभग वैसा ही है जैसे पॉल कह रहा हो, यदि आपने ऐसा किया है तो यह प्रमाण है कि आपको भगवान की पवित्र आत्मा प्राप्त हुई है। क्योंकि आत्मा पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी यह स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर कुरिंथियों, कुछ आध्यात्मिक उपहारों के बारे में अब और घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात के संकेत के रूप में कि आपके पास आत्मा है या किसी और के पास नहीं है, कोई ऊंची जीभ या कोई अन्य उपहार नहीं। इसके बजाय सभी उपहार समान रूप से आत्मा को प्रकट करते हैं। सभी उपहार एक शरीर के कामकाज में उसी तरह योगदान करते हैं जैसे शरीर के सभी अंग भौतिक तल पर एक भौतिक शरीर के संचालन में योगदान करते हैं। अब पॉल समाप्त होता है अध्याय 12 में। पॉल यह कहकर समाप्त करता है, लेकिन बड़े उपहारों के लिए प्रयास करो और मैं तुम्हें और अधिक उत्कृष्ट रास्ता दिखाऊंगा। सबसे पहले पॉल का क्या मतलब है जब वह उन्हें बड़े उपहारों के लिए प्रयास करने के लिए कहता है। मुझे लगा कि उन्होंने अभी अभी कहा है कि खेल का मैदान समतल है। किसी अन्य से बढ़कर कोई उपहार नहीं है। सभी उपहार समान रूप से आत्मा को दर्शाते हैं। अब पॉल ने अचानक चर्च को बड़े उपहारों के लिए प्रयास करने के लिए क्यों कहा? और दूसरी बात यह है कि जब आप अध्याय 12 से 14 पढ़ते हैं तो अध्याय 13 पहली नजर में एक घुसपैठ लगता है। वह प्रसिद्ध प्रेम अध्याय जिसे हम शादियों और इस तरह की चीजों में पढ़ते हैं, और मैंने और मेरी पत्नी ने इसे अपनी शादी में पढ़ा था। अध्याय 13 प्रेम दयालु है, प्रेम धैर्यवान है, आदि आदि। हम अक्सर इसे इससे हटा देते हैं। एक कुरिन्थियों में प्रासंगिक वातावरण और विभिन्न अवसरों पर इसे पढ़े, और एक कुरिन्थियों 13 में पर्याप्त है। इसमें एक प्रकार का काव्यात्मक गुण है जो हमें इसके साथ ऐसा करने की अनुमति देता है। लेकिन मैं यह पूछने के लिए लौटना चाहता हूं कि अध्याय 13 वहां क्या कर रहा है, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपने अध्याय 13 को हटा दिया तो अध्याय 12 स्वाभाविक रूप से अध्याय 14 में ले जाएगा। इसलिए हम वापस आएंगे और पूछेंगे अध्याय 13 वहां क्या कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि अध्याय 13 में पॉल के मन में कौन से महान उपहार हैं? चूंकि अध्याय 14 शुरू होता है, प्रेम का पीछा करें और आध्यात्मिक उपहारों के लिए प्रयास करें, विशेष रूप से ताकि आप भविष्यवाणी कर सकें। अब बड़ा उपहार, जब पॉल बड़े उपहारों का पीछा करने के लिए कहता है तो मैं इससे आश्वस्त हूं, उसका मतलब एक कुरिन्थियों अध्याय 14 में भविष्यवाणी है। इसलिए अध्याय 12 जो बड़े उपहारों के लिए प्रयास करने की आज्ञा के साथ समाप्त होता है, फिर स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है अध्याय 14 में, जहां पॉल भविष्यवाणी के उपहार के बारे में बात करने जा रहा है और यह किस प्रकार का है और कुरिन्थियों को इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि फिर से पॉल इसे एक बड़ा उपहार क्यों कहता है और वह उन्हें भविष्यवाणी के लिए प्रयास करने के लिए क्यों कहता है? मेरा मतलब है, मैंने सोचा कि वह इसे खत्म करने की कोशिश कर रहा था कि कुछ उपहार दूसरों से बेहतर हैं और खेल का मैदान बराबर है। वह उन्हें भविष्यवाणी के उपहार के लिए प्रयास करने के लिए क्यों कहता है? मुझे लगता है कि भविष्यवाणी ईश्वर के लोगों तक एक संदेश, एक समझदार संदेश संप्रेषित करने की क्षमता मात्र है। पुनः याद रखें, हम चर्च के संदर्भ में हैं। पॉल का संबोधन अध्याय 12 से 14 में, पॉल यह संबोधित नहीं कर रहा है कि कुरिन्थवासी क्या करते हैं जब वे घर पर या कार्यस्थल पर होते हैं। वह संबोधित कर रहे हैं कि जब वे अपनी चर्च सेवा में पूजा करने के लिए एक साथ आते हैं तो वे क्या करते हैं। हम क्या कहेंगे उनकी चर्च सेवा? आपको क्या लगता है कि पॉल उन्हें सबसे महान उपहार, जो कि भविष्यवाणी है, का अनुसरण करने के लिए क्यों कहता है? वो ऐसा क्यों करेगा? खास तौर पर तब जब वह उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हो कि नहीं, दूसरे से बड़ा कोई उपहार नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप जीभ या किसी अन्य उपहार को यह संकेत देने के लिए बढ़ाए कि आपके पास अधिक आत्मा है? अब वह कहता है, ओह, वैसे मैं चाहता हूं कि आप उस बड़े उपहार का अनुसरण करें जिसे मैं अध्याय 14 में लेता हूं, वह भविष्यवाणी है। अध्याय 14 का पूरा भाग भविष्यवाणी के इस उपहार, चर्च के संदर्भ में उनके निर्माण के लिए भगवान के लोगों को एक समझदार संदेश देने की क्षमता के लिए समर्पित है, क्योंकि यह पूरे चर्च के लिए सबसे उपयोगी उपहार है। फिर से ध्यान दें कि वह क्या कहता है। अध्याय 12 में उन्होंने कहा कि उपहारों का उद्देश्य, आइए देखें, कई बार उन्होंने कहा कि उपहारों का उद्देश्य संपूर्ण चर्च के निर्माण के लिए था, या इस रूपक का उपयोग करने के लिए मसीह के शरीर के लिए था। और अब ध्यान दें कि वह अध्याय 14 में क्या कहता है। वह कहता है, प्रेम का पीछा करो और आध्यात्मिक उपहारों के लिए प्रयास करो, विशेषकर ताकि तुम भविष्यवाणी कर सको। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं, वे औरों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। क्योंकि वे आत्मा में भेद की बातें कहते हैं, इसलिए कोई उन्हें नहीं समझता। अब पॉल यह नहीं कहता कि यह गलत है, वह बस इतना कहता है कि यह एक वास्तविकता है। अन्य भाषाएं मुख्य रूप से अन्य भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए हैं। दूसरी ओर श्लोक 3 में वह कहते हैं, दूसरी ओर जो लोग भविष्यवाणी करते हैं, वे अन्य लोगों से उनके उत्थान और प्रोत्साहन और सांत्वना के लिए बात करते हैं। जो अन्य भाषा में बोलते हैं, वे अपना विकास करते हैं, जो गलत नहीं है। पॉल बस यही कह रहा है कि यह ऐसा ही है। अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति के लिए अन्य भाषाएं मुख्य रूप से लाभकारी होती हैं, परंतु जो भविष्यवाणी करते हैं, वे कलीसिया का निर्माण करते हैं। तो फिर पॉल अन्य भाषाओं पर जोर क्यों देता है? इसका कारण यह नहीं है कि वह पहले कही गई बातों का खंडन करता है कि सभी उपहार समान हैं, बल्कि वह कुरिन्थियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रतिकार कर रहा है। कुरिन्थियन शेखी बघार रहे हैं, वे न केवल अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में शेखी बघारने और अधिक विभाजन पैदा करने के दोषी हैं, बल्कि वे एक ऐसे उपहार पर भी जोर दे रहे हैं जो मुख्य रूप से एक व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, वह व्यक्ति जो अन्य भाषा में बोलता है। जहां पॉल चाहेंगे जब चर्च, यहां उस संदर्भ को याद रखें जब वे पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। जब चर्च पूजा के लिए इकट्ठा होता है तो पॉल चाहता है कि वे भविष्यवाणी का अनुसरण करें। क्यों? क्योंकि यह समझने योग्य और सभी के लिए तत्काल लाभकारी है। जैसा कि उन्होंने कहा, जो भविष्यवाणी करता है वह सभी से बात करता है। जो भविष्यवाणी करता है वह एक समझदार संदेश बोलता है जिसे हर कोई सुन सकता है और उससे लाभ उठा सकता है। जो अन्य भाषा में बोलता है वह मूल रूप से ईश्वर से बात करता है और ऐसे रहस्य बोलता है जिससे हर किसी को लाभ नहीं हो सकता है। तो पौलुस जो कह रहा है वह यह है कि कुरिन्थियो, जब आप आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं तो उन उपहारों का पीछा करें जो समझ में आते हैं और मसीह के पूरे शरीर के निर्माण का तत्काल प्रभाव डालते हैं। अन्य भाषाएं नहीं, जिसके साथ फिर से पॉल ठीक है और चाहता है कि वे अन्य भाषाएं बोलें, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं तो आपको मुख्य रूप से भविष्यवाणी का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह भविष्यवाणी है, यह समझदार संदेश है जिसे कोई संप्रेषित करता है, प्रभु से प्राप्त करता है और संप्रेषित करता है समग्र रूप से चर्च के लिए। चूंकि यह समझने योग्य और समझदार है, इसलिए इसमें मसीह के संपूर्ण शरीर के निर्माण का सबसे अच्छा मौका है। जबकि जो अन्य भाषाएं बोलता है वह ऐसे रहस्यों का उच्चारण कर सकता है जिन्हें हर कोई नहीं समझता। जीभ पर कभी कभी ध्यान दिया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं जब पॉल कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम में से हर कोई अन्य भाषा में बोले? हाँ, दोबारा, शायद जब पॉल कहता है, मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई अन्य भाषा में बात करे, मेरा मतलब है यह है, मुझे लगता है कि यह उसकी बयानबाजी और उसका तर्क है कि फिर से वह कह रहा है, हाँ भाषाएं ठीक हैं, लेकिन फिर जब पूजा की बात आती है तो कभी कभी पॉल पूरे कुरिन्थियों में इसी तरह का तर्क देता है। वह किसी बात से सहमत होगा, वह कहेगा, हाँ आप सही हैं, हालांकि आप मुद्दे से चूक गए हैं। तो हाँ, यह बहुत अच्छा होगा यदि हर कोई अन्य भाषा में बात करेगा, मेरी व्याख्या। हाँ, यह बहुत अच्छा होगा यदि आप सभी अन्य भाषाएं बोलें, लेकिन जब आप एक चर्च के रूप में एकत्रित होते हैं तो यह मसीह के संपूर्ण शरीर के निर्माण का समय होता है। भविष्यवाणी वह उपहार है जिसके पास ऐसा करने का सबसे अच्छा मौका है। इसलिए सर्वोत्तम उपहारों का पीछा करें। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। इस कक्षा को पढ़ाने से पहले मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी। मैं आपके सभी प्रश्नों का अनुमान लगा सकता था। हाँ, यह सही है। पॉल फिर से कहता है कि यदि इसका उपयोग किया जाना है तो इसके लिए एक दुभाषिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे यह पूरे चर्च के लिए समझ में आ सकता है। सही? हाँ, फिर मैं चाहूंगा, क्या तुम कैमरा काट सकते हो टेड? नहीं, मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है। मैं फिर से पॉल की सलाह का पालन करूंगा। मैं जिस चीज का विरोध करता हूं वह इतना नहीं है कि कितने लोग अन्य भाषाओं में बोलते हैं या पूरा चर्च। यही कारण है कि यही मामला है। क्या मैं अभी भी सोचता हूं कि पॉल के निर्देशों का पालन करते हुए अब एक तरह के दो छोर हैं स्पेक्ट्रम का, कुछ लोगों ने सुझाव दिया है। ठीक है, जीभ अब आज के लिए एक वैध उपहार नहीं है। यह नए नियम के पूरा होने के साथ है। अब जब हमारे पास ईश्वर का पूर्ण रहस्योद्घाटन है तो हमें अन्य भाषाओं की आवश्यकता नहीं है। तो यह पहली शताब्दी के लिए था और आज यह मान्य नहीं है। धारा का विपरीत छोर स्पेक्ट्रम का अंत चरम छोर कुछ अधिक करिश्माई में से एक है। फिर से मैं सभी करिश्माई आंदोलनों को एक ही लेबल नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनमें से कुछ जहां जीभ अभी भी होने का एक मानदंड है आत्मा प्राप्त की। दूसरे शब्दों में केवल ईसाई बनना और मसीह में अपना विश्वास व्यक्त करना ही पर्याप्त नहीं है। किसी बिंदु पर आपको अन्य भाषाओं में बोलना होगा और पवित्र आत्मा प्राप्त करना होगा। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल रहा है कि अन्य भाषाएं एक आवश्यक संकेत है कि किसी के पास आत्मा है। इसलिए सिद्धांत रूप में मैं संपूर्ण चर्च के अन्य भाषा में बोलने के खिलाफ नहीं हूं। मैं जो सोचता हूं कि मैं इसके खिलाफ हूं, इसलिए नहीं कि मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं एक कुरिन्थियों को सही ढंग से पढ़ता हूं तो मैं सुझाव दे रहा हूं कि हर किसी को एक संकेत के रूप में अन्य भाषाओं में बोलना होगा कि वह आध्यात्मिक है और उसे प्राप्त हुआ है आत्मा। ऐसा प्रतीत होता है कि पॉल इसी चीज के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो मेरा सवाल इतना नहीं होगा कि क्या जीभें, नहीं, मुझे लगता है कि जीभें अभी भी वैध हैं। मुझे एक कुरिन्थियों में ऐसा कुछ नहीं दिखता जो कहता हो कि यह केवल पहली शताब्दी के लिए था और अब मान्य नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा है, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अन्य भाषाएं बोली हैं। लेकिन मैं जो सोचता हूं वह गलत है जब इसे एक मानदंड बना दिया जाता है कि किसी के पास आत्मा है, और इसे हर किसी पर थोपा जाता है कि हर किसी को एक संकेत के रूप में अन्य भाषा में बोलना पड़ता है कि आपको आत्मा प्राप्त हुई है। पॉल जो कह रहा है वह बिल्कुल सच नहीं है। हाँ, मेरा मतलब है कि भाषाएं एक अर्थ में काफी विविध घटनाएं प्रतीत होती हैं। आप अधिनियम 2 पर वापस जाएं। याद रखें, हमने अधिनियम 2 के बारे में बात की थी। निःसंदेह आपको वह याद है। जब पुराने नियम की पूर्ति में लोगों पर पवित्र आत्मा उंडेला गया तो उन्होंने अन्य भाषाएं बोली, और पाठ में कुछ सबूत हैं कि उसमें से बहुत सी भाषा पहचानने योग्य थी। इसमें कहा गया है कि उनमें से कुछ ने अपनी भाषा पहचान ली। लेकिन एक कुरिन्थियन इसके बारे में इस संदर्भ में बात करता है जब यह कहता है कि यह ईश्वर से रहस्यों की बात करता है, तो ऐसा लगता है कि यह कुछ और भी हो सकता है। इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं, लेकिन निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि हम इसे सीमित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जीभ यही है और यह हमेशा कैसी दिखती है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि चर्चों के लिए मुख्य बात यह है कि वे पूछें कि वे क्या कर रहे हैं या उनका जोर किस पर है और अन्य भाषाओं का कार्य क्या है। फिर से यह दिलचस्प है कि जब चर्च एक साथ आता है तो जिस बात पर कुछ लोग जोर देते हैं वही बात है जिसे पॉल कहते हैं उस पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। अर्थात जब चर्च एक साथ इकट्ठा होता है तो जिस बात पर जोर दिया जाना चाहिए वह मसीह के संपूर्ण शरीर का निर्माण है, न कि वह जिससे मुझे लाभ होता है या यह दर्शाता है कि मेरे पास आत्मा है या ऐसा कुछ है। अच्छे प्रश्न। इस पाठ के बारे में कुछ बातें जो मैं सुझाऊंगा। दिलचस्प बात यह है कि इस पृष्ठभूमि के कारण ऐसा नहीं लगता है कि पॉल हमें सभी उपहारों की पूरी सूची के करीब कुछ भी देता है। मुझे लगता है कि वह केवल कुरिन्थियों को यह दिखाने के लिए एक प्रतिनिधि सूची दे रहा है कि चर्च के भीतर आत्मा स्वयं को दिखाने के कई तरीके हैं। वास्तव में जब आप जोड़ते हैं तो नया नियम कुछ ही स्थानों पर आध्यात्मिक उपहारों के बारे में बात करता है। इफिसियों अध्याय 4 में एक और खंड है। रोमियो अध्याय 12 में एक और खंड है। हमने रोमनों को पहले ही देख लिया था, लेकिन अध्याय 12 में समय नहीं बिताया जहां अन्य उपहारों का उल्लेख किया गया है। उनमें से कुछ एक कुरिन्थियों 12 में इस सूची के साथ ओवरलैप होते हैं। उन अंशों में उल्लिखित अन्य उपहार इसके अतिरिक्त हैं। लेकिन जब आप उन सभी को जोड़ते हैं तब भी मुझे नहीं लगता कि नए नियम के लेखक का यह कहने का इरादा था कि यह सभी उपहारों की पूरी सूची है। वास्तव में मुझे विश्वास है कि पॉल ने सोचा होगा कि जिस तरह से पवित्र आत्मा काम कर सकता है वह इतना विविध है कि इसे कभी भी उपहारों की एक साधारण सूची तक सीमित नहीं किया जा सकता है। तो पॉल बस इतना कह रहा है, यहाँ आपको एक विस्तृत सूची देने के विपरीत उन तरीकों का एक उदाहरण दिया गया है जिनमें आत्मा स्वयं को प्रकट करता है। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो शायद आप में से कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा। फिर मैं अब एक तरह से देहाती हो रहा हूँ, लेकिन मैंने उन आध्यात्मिक उपहार सूची परीक्षणों में से एक लिया जहाँ आप इन सभी सवालों के जवाब देते हैं और आप उनमें से दो को आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट स्थिति से सम्मानित करते हैं। इसके बजाय वह उन्हें दिखाना चाहता है कि पवित्र आत्मा किसी एक उपहार तक सीमित नहीं हो सकता। सभी उपहार समान रूप से आत्मा को दर्शाते हैं और वह उन्हें केवल एक नमूना सूची देता है। इसलिए संभवतः इस बात में बहुत विविधता है कि हम आध्यात्मिक उपहारों को कैसे देखते हैं, हम उनका पता कैसे लगाते हैं, क्या हमारे पास एक से अधिक उपहार हैं, क्या कुछ उपहार विकसित हो सकते हैं और क्या हम उपहार बदल सकते हैं आदि। पॉल उन सवालों का जवाब नहीं देता है और उन क्षेत्रों में राय में कुछ मतभेद हैं। लेकिन प्राथमिक बात हालांकि एक कुरिन्थियों से यह सुनिश्चित करना है कि हम उनका उपयोग इस तरह से करें कि जब चर्च पूजा के लिए इकट्ठा हो तो तुरंत मसीह के शरीर का निर्माण हो। चर्च में हमारे पास जो उपहार या पद है उसके आधार पर हमारे स्वयं के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ावा देने या हमारी स्वयं की आध्यात्मिक या सामाजिक स्थिति पर जोर देने के लिए कोई जगह नहीं है। पॉल इसे तुरंत सीमा से बाहर कर देता है। ऐसा कहने के बाद अध्याय 13 के बारे में क्या कहना जो बीच में डाल दिया गया है, यह प्रसिद्ध प्रेम अध्याय। दोबारा मैं पूरी बात नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यह शुरू होता है, अगर मैं बोलता हूँ तो मेरा मतलब है, यह स्पष्ट है कि पॉल इसे उपहारों की अपनी चर्चा से जोड़ता है क्योंकि वह उपहारों के बारे में बात करता है। वह अध्याय 13 में केवल प्रेम के बारे में बात नहीं करता है। वह यह कहकर शुरू करते हैं कि अगर मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषा बोलता हूँ लेकिन मेरे पास प्यार नहीं है तो मैं एक शोर करने वाला घंटा या बजती हुई झांझ हूँ। और यदि मेरे पास भविष्यद्वक्ताओं की शक्ति है और मैं सब रहस्यों को समझता हूँ और मेरे पास सारा ज्ञान है, और यदि मुझ में पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा सकता हूँ, परंतु मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यदि मैं अपनी सारी संपत्ति त्याग दूँ और अपना शरीर भी सौंप दूँ कि मैं घमंड करूँ परंतु प्रेम न रखूँ, तो मुझे कुछ लाभ नहीं। प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है, प्रेम ईर्ष्यालु या घमंडी या अहंकारी नहीं है। यह असभ्य नहीं है, यह अपने तरीके पर जोर नहीं देता है। वह चिड़चिड़ा या क्रोधी नहीं है, वह गलत काम में खुश नहीं होता बल्कि सच्चाई से खुश होता है। यह सभी चीजों को सहन करता है, सभी चीजों पर विश्वास करता है, सभी चीजों की आशा करता है, सभी चीजों को सहता है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अब ध्यान दें कि पॉल आध्यात्मिक उपहारों की ओर वापस लौटने जा रहा है। लेकिन जहां तक भविष्यवाणियों का सवाल है, उनका अंत हो जाएगा। जहां तक जीभ की बात है, वे बंद हो जाएंगी। जहां तक ज्ञान की बात है, तो वह खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम आंशिक रूप से जानते हैं, हम आंशिक रूप से भविष्यवाणी करते हैं, जब पूर्ण आएगा तो आंशिक समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर वह यह कहकर समाप्त करते हैं, और अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीन मौजूद हैं, और इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले, पॉल ने इस पर विशेष ध्यान क्यों दिया? हम एक क्षण में पूछेंगे कि प्रेम पर यह अध्याय यहीं क्यों है, लेकिन पॉल इन उपहारों में सबसे महान उपहार के रूप में प्रेम पर प्रकाश क्यों डालता है? मेरा मतलब है, वह आशा कहता है, अब आशा, विश्वास और प्रेम मौजूद है, सबसे बड़ा प्रेम है। खैर, मेरा मतलब है, क्या यीशु मसीह में विश्वास महत्वपूर्ण नहीं है? या आशा मुक्ति के लिए भगवान के सभी वादों की पूर्ति की मेरी अपेक्षा व्यक्त करते हुए कि हम एक दिन भविष्य में प्रवेश करेंगे? निःसंदेह यह महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि वह इस बिंदु पर प्यार को अलग थलग क्यों कर देता है? ठीक है, तो फिर प्रेम, प्रेम प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हो सकता है। यदि किसी में वास्तव में विश्वास और आशा है, तो वह स्वयं को प्रेम में प्रदर्शित करेगा। मैं आदर्श रूप से कहूंगा, यदि आपके पास वह प्यार है जिसके बारे में वह बात कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जीभ से बात करने की जरूरत नहीं है। यह सब ज्ञान से बाहर है, और यह सब आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जान लें कि वह प्यार, आप जानते हैं यीशु, और वह सब काफी सच्चा है। आपको इसे किसी अन्य भाषा में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है जिसे लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, सही। ठीक है, तो प्यार होगा। फिर से, अगर वे प्यार से काम करते हैं तो वह स्पष्ट और दृश्यमान होगा। आप इसे उनके कार्यों में देखेंगे। ठीक है, इन उपहारों के अलावा। ठीक, अच्छा अच्छा, मुझे आश्चर्य है, और मैं किसी एक विशेष उत्तर की तलाश में नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि वे सब ठीक हैं। मुझे यह भी आश्चर्य है कि जब आप उन तीन चीजों को देखते हैं, और यह मुझे हमेशा हैरान करता है कि पॉल इस बात पर जोर क्यों देता है, जब आप उन तीन चीजों को देखते हैं तो यह प्यार ही वह चरित्र है जिसे हम सबसे अधिक कर सकते हैं। उन तीन में से यह है, मुझे अच्छा लगता है कि हमें ईश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यह कभी नहीं कहता कि ईश्वर विश्वास करता है या ईश्वर आशा और अपेक्षा रखता है, बल्कि वह प्रेम करता है और ईश्वर प्रेम है। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि अगर इसका एक हिस्सा प्रेम में है, तो उन तीनों में से यह वह प्रेम है जिसे ईश्वर स्वयं प्रतिबिंबित करता है और करता है, और यह प्रेम करने से है, विश्वास और आशा से नहीं, बल्कि प्रेम करने से ही हम परमेश्वर के चरित्र और उसके प्रेमपूर्ण गुणों और उसकी प्रेमपूर्ण गतिविधि को भी प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ निश्चित रूप से हमें अब स्वर्ग की आशा नहीं करनी होगी, क्योंकि हम उसमें भाग लेंगे, लेकिन प्रेम अभी भी बना रहेगा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता हो कि स्वर्ग पहुंचने के बाद हम प्यार करना बंद कर देंगे। अच्छा हाँ, क्या यह यीशु द्वारा सबसे बड़ी आज्ञा कहे जाने की प्रतिध्वनि हो सकती है? निश्चित रूप से यह यीशु की आज्ञा को भी प्रतिबिंबित कर सकता है कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तुम्हें अपने ईश्वर और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। यह बिल्कुल सही तरीका हो सकता है। अध्याय 13 यहाँ क्यों है? पुनः विशेष रूप से अध्याय 12 के बाद से, यदि अध्याय 13 गायब था तो आप अध्याय 12 से 14 में संक्रमण से बहुत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 13 यहाँ क्यों है? मेरा मतलब है, हम सभी जानते हैं कि यह प्यार के बारे में है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें वह काव्यात्मक गुण है जो इसे इसके प्रासंगिक परिवेश और बंधनों से हटाकर विभिन्न संदर्भों जैसे शादियों आदि में उपयोग करने की अनुमति देता है। लेकिन अपने साहित्यिक संदर्भ में इस चर्चा के बीच में अध्याय 13 यहाँ क्या कर रहा है? फिर अध्याय 13 में पॉल अन्य भाषाओं और भविष्यवाणी का उल्लेख करता है, इसलिए स्पष्ट रूप से कुछ संबंध है। लेकिन यह है क्या? इस बिंदु पर वह प्रेम के गुणों का गुणगान करते हुए इस तरह के उत्कृष्ट गद्य या लगभग काव्य प्रकार के पाठ की शुरुआत क्यों करता है? यहाँ क्यों? आइए इसे तोड़े। आखिर में क्या आपको इन सभी चीजों की जरूरत है? याद रखें, प्रेम सबसे बड़ी आज्ञा है। तो वह एक तरह से उसे वापस ला रहा है कि यदि आपके पास यह सच्चा प्यार है तो मुझे लगता है आपको इस सब की आवश्यकता नहीं है। और फिर यदि आप चाहें तो इसे वापस वास्तविकता में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और फिर वास्तविकता की ओर लौटते हुए इन उपहारों का उपयोग कुरिन्थियों की तरह अपनी स्थिति के बारे में शेखी बघारने के लिए नहीं किया जाएगा। तो दूसरे शब्दों में अध्याय 13 में उसके प्रेम के वर्णन के बारे में फिर से सोचें। जब वह कहता है प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है, यह घमंड या घमंडी या असभ्य नहीं है, यह अपने तरीके से आग्रह नहीं करता है, वगैरह वगैरह, यह सभी चीजों को सहन करता है, सभी चीजों पर विश्वास करता है, सभी चीजों की आशा करता है, सभी चीजों को सहता है। मुझे लगता है कि पॉल जो कह रहा है वह यह है कि यदि आप इस तरह के प्यार का उदाहरण देते हैं तो आप अपने उपहारों का उपयोग अपनी आध्यात्मिक स्थिति पर घमंड करने के तरीके के रूप में नहीं करेंगे। इसके बजाय यदि आपके पास अध्याय 13 में वर्णित प्रकार का प्रेम है तो वह केवल आपके ही नहीं बल्कि मसीह के संपूर्ण शरीर के निर्माण के लिए आपके उपहारों का उपयोग करने में प्रकट होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यह अध्याय पॉल जो कर रहा है उसके लिए पूरी तरह से प्रासंगिक है। और फिर यदि वे अध्याय 13 में प्रेम के प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं तो वे अपनी आध्यात्मिक स्थिति और उपहारों या सामाजिक स्थिति के बारे में घमंड नहीं करेंगे। इसके बजाय वे केवल उपहारों का पीछा करेंगे। यदि उनमें वास्तव में प्रेम है, सच्चा प्रेम अध्याय 13 में वर्णित है, तो वे उन उपहारों का अनुसरण करेंगे जो मसीह के संपूर्ण शरीर के लिए प्रासंगिक हैं। वे पूरे चर्च के निर्माण के लिए चिंतित होंगे, न कि केवल इससे जिससे उन्हें लाभ होगा। तो अध्याय 13 मुझे लगता है कि हम कुछ चूक गए हैं। फिर जैसा कि मैंने कहा, अध्याय 13 को बाहर निकालना और प्रेम के बारे में अन्य संदर्भों में इसका उपयोग करना गलत नहीं है। लेकिन अंततः हमें यह याद रखना होगा कि पॉल ने इसे यहाँ क्यों रखा। इसका संबंध इस बात से है कि यदि उनमें उस प्रकार का प्रेम है तो वे चर्च में उपहारों का उपयोग मसीह के शरीर के निर्माण के लिए उचित रूप से करेंगे, न कि अपनी आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट स्थिति और इस तरह की चीजों के बारे में डींगे हाँकने के लिए। ठीक है। 12 से 14 पर कोई अन्य प्रश्न? फिर पॉल हमें आध्यात्मिक उपहारों के बारे में जानने के लिए सब कुछ नहीं बताता है, कितने हैं, उन्हें कैसे खोजें या अपने उपहार की खोज कैसे करें। उन्हें उन सवालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह एक बहुत ही विशिष्ट समस्या का समाधान कर रहा है और केवल उस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक जानकारी ही संप्रेषित करता है। और शायद इसीलिए आपको पॉल के अन्य पत्रों में उल्लिखित समस्या नहीं मिलती, क्योंकि यह वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। ऐसा लगता था कि यह कोरिंथियन चर्च में था, लेकिन संभवतः अधिकांश अन्य चर्चों में यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। इसलिए वह वास्तव में कभी भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। यह अजीब लगेगा कि अगर यह एक प्रथा थी तो मेरा मतलब है मैं गायन जैसा कुछ समझ सकता हूँ जो दूसरे धर्म में हुआ और फिर यह ईसाई धर्म में आया और अभी भी पूजा करना उचित है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में वे दावा कर रहे हैं कि यह आ रहा है बाह्य रूप से भगवान से। ऐसा लगता है कि यह किसी दूसरे धर्म से आया हुआ है। हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं यह कहना चाहता हूँ कि ईसाई धर्म ने इसे अन्य धर्मों से उधार लिया है। यह बस वही है जिस पर अन्य धर्म जोर देते हैं। जैसे अन्य धर्म गायन और स्तुति पर जोर देते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि ईसाई धर्म ने इसे उनसे उधार लिया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह समानता का क्षेत्र था, और इसलिए मैं बस इतना कह रहा हूं कि अन्य ईसाई धर्म ने किसी अन्य धर्म से भाषाएं उधार नहीं ली होंगी। यह सिर्फ समानता का एक क्षेत्र है जो समस्या का कारण हो सकता है। यदि कुरिंथियों में से कुछ ऐसे धर्मों से संबंधित थे जहां उनके कुलीन दर्जे के साथ उत्साहपूर्ण प्रकार का भाषण जुड़ा हुआ था, तो हो सकता है कि वे इसे ईसाई धर्म में ले आए हों जिसमें एक समान घटना थी, और इसलिए यह एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं यह नहीं कहना चाहता कि ईसाई धर्म ने अन्य धर्मों से जीभ उधार ली है। हो सकता है कि उनके साथ भी ऐसी ही घटना हुई हो। संभवतः कुछ कुरिंथियों ने कुछ धार्मिक संदर्भों में जो कुछ सीखा था उसे ईसाई संदर्भ में अपनी भाषाओं के उपयोग में शामिल कर रहे थे। ये एक अच्छा बिंदु है। क्या ऐसा हो सकता है कि अन्य धर्मों द्वारा जो बातें सामने आईं, उनमें से अधिकांश वास्तविक आध्यात्मिक उपहारों के बजाय आध्यात्मिक उपहारों के लिए लाया गया अभिमान और अहंकार था? अधिक जोर इस बात पर है कि अन्य धर्मों में भी इसी तरह का मुद्दा था जहां आप यह कहकर खुद को ऊंचा उठाना चाहते थे कि मेरे पास इस धर्म में ये सभी चीजें हैं, और वह अन्य धर्मों से इसकी निंदा कर रहा है जहां यह एक आध्यात्मिक उपहार हो सकता है। जरूर, हाँ, आप सही हैं। पॉल कोरिंथियंस में जिन चीजों की निंदा करता है उनमें से अधिकांश धर्मनिरपेक्ष कोरिंथियन संस्कृति से आई हैं, या तो उनकी राजनीतिक संस्कृति, ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या धार्मिक पृष्ठभूमि से जो अब चर्च में घुसपैठ कर चुकी है। न्यू टेस्टामेंट के एक प्रसिद्ध विद्वान ने आफ्टर पॉल लेफ्ट कोरिंथ नामक पुस्तक लिखी, और यह उनकी थीसिस की तरह थी कि जब पॉल ने अपने चर्च की स्थापना की, जिसके बारे में हमने अधिनियम 18 में उनके कुरिंथ छोड़ने के बाद पढ़ा, तो ये सभी समस्याएं जो धर्मनिरपेक्ष कोरिंथ, उनके धर्मों, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि वगैरह से आईं, वे अब रेंगना शुरू कर दी चर्च में प्रवेश, और इन सभी समस्याओं का कारण विशेष रूप से धर्मों के भीतर और कोरिंथियन जीवन के अन्य क्षेत्रों में स्थिति और वर्ग और सामाजिक भेदभाव से संबंधित समस्याएं। अच्छा, अध्याय पंद्रह संभवतः पुनरुत्थान के विषय पर पॉल या किसी भी नए नियम के लेखक द्वारा किया गया सबसे लंबा और सबसे निरंतर उपचार है, जहां पॉल यीशु के पुनरुत्थान इस तथ्य पर चर्चा करके शुरू करता है कि यीशु पुनर्जीवित हो गया है, और वह इसे भाग के साथ जोड़ता है। यह प्रारंभिक प्रेरितों की शिक्षा का हिस्सा है जिसे प्रारंभिक चर्च में पारित किया गया है। तो पॉल कहते हैं, जो कुछ मुझ पर पारित किया गया था वह मैंने आपको दिया, जो अक्सर एक परंपरा को आगे बढ़ाने की तकनीकी भाषा है। और इसका एक हिस्सा यह था कि यीशु मर गया, उसे दफनाया गया और वह फिर से जी उठा। और फिर उसके बाद, हालांकि अध्याय 15 के शेष भाग में पॉल सामान्य रूप से पुनरुत्थान की अधिक विस्तृत चर्चा शुरू करता है, सामान्य रूप से भौतिक पुनरुत्थान को समझने की वैधता। तो दिलचस्प बात यह है कि अध्याय 15 भौतिक शारीरिक पुनरुत्थान के लिए पॉल का बचाव प्रतीत होता है, मुख्य रूप से यीशु मसीह का नहीं। हालांकि यह महत्वपूर्ण है, यह इसके केंद्र में है। लेकिन वह हमारे पुनरुत्थान के लिए भी तर्क देते हैं। तथ्य यह है कि इतिहास के अंत में एक भौतिक पुनरुत्थान होना चाहिए, और हम देखेंगे कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन आइए एक पल के लिए फिर से सोचें, लेकिन पॉल को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों होगी? मेरा मतलब है, क्या पॉल बस रुक गया? ठीक है, मैंने मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। हम उपहारों और चीजों में एक तरह से विषय से भटक गए हैं। बेहतर होगा कि मैं ईसा मसीह के पास वापस आ जाऊं, इसलिए मैं उनके पुनरुत्थान के बारे में बात करूंगा। आपको क्या लगता है कि पॉल को उस मुद्दे को क्यों संबोधित करना पड़ा? क्योंकि अब तक हमने जो देखा है, उसके अनुसार प्रत्येक अध्याय कोरिंथियन चर्च में एक विशिष्ट समस्या को संबोधित करता हुआ प्रतीत होता है। अब आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पॉल को शारीरिक पुनरुत्थान के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता थी? कोई अंदाजा? पुनर्स्थापनात्मक और आध्यात्मिक शारीरिक विचारों के प्लेटोनिक प्रभाव और इसे एक शारीरिक लड़ाई के रूप में बहाल करने जैसे तनाव की ओर क्या संकेत हो सकता है? ठीक है, तो शायद भौतिक और आध्यात्मिक के बीच अंतर की इस तरह की प्लेटोनिक सोच ने किसी स्तर पर कोरिंथियन चर्च में घुसपैठ कर ली थी, और शायद अन्य विशेषताओं के साथ संयोजन में, जो अब इनकार की ओर ले गया, इतना अधिक पुनरुत्थान नहीं बल्कि एक भौतिक पुनरुत्थान कि इस तरह के प्लेटोनिक के कारण उचित पुनरुत्थान आध्यात्मिक होगा न कि भौतिक। यह सोचना कि भौतिक महत्वपूर्ण नहीं है, सच्ची वास्तविकता वही है जो आध्यात्मिक है। मेरे विचार से तुम सही हो। यह भी ध्यान दें कि अध्याय 15 के साथ वास्तव में आपके पास अध्याय 14 से कोई अवकाश नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे शब्दों में अब आपके पास पुनरुत्थान से संबंधित अध्याय 15 नहीं है। तो आपने अब उन चीजों के बारे में मुझे लिखा है जिनके बारे में आपने मुझे लिखा है, अब इसके बारे में, अब मूर्तियों को चढ़ाए गए मांस के बारे में, अब आध्यात्मिक उपहारों के बारे में, और अब वह अनुपस्थित है, वह अभी लॉन्च हुआ है। अब मैं आपको उस खुशखबरी की याद दिलाऊंगा जो मैंने घोषित की थी, जो आपको प्राप्त हुई, जिसमें आप भी खड़े हैं। और फिर वह आगे बढ़ता है और इतनी अधिक बचाव या क्षमा याचना की चर्चा शुरू नहीं करता, बल्कि यीशु के पुनरुत्थान और उसके महत्व की याद दिलाता है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि यदि इस द्वैतवादी प्रकार की सोच अध्याय 12 और 14 के बाद कड़ी मेहनत से भी परिलक्षित होती, तो तथ्य यह है कि उनमें से कुछ ने सोचा था कि वे आध्यात्मिक रूप से पहुंचे थे, वे आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट स्थिति के थे। किसी और चीज की, किसी भौतिक पुनरुत्थान की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर से यह विचार कि कुछ उपहार दर्शाते हैं कि वे आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट स्थिति हैं, इसका तात्पर्य यह था कि शारीरिक पुनरुत्थान की कोई आवश्यकता नहीं है, कि मैं आध्यात्मिक रूप से आ गया हूं। मुझे बस एक आध्यात्मिक पुनरुत्थान की आवश्यकता है, शायद अभी या भविष्य में। और इसलिए अब पॉल को उस सोच को संबोधित करते हुए फिर से इस प्लेटोनिक प्रकार के द्वैतवाद के साथ अब उन्हें याद दिलाना होगा, और न केवल पुनरुत्थान की आवश्यकता के लिए तर्क देना होगा, बल्कि शारीरिक रूप में शारीरिक पुनरुत्थान भी करना होगा, न कि केवल आध्यात्मिक पुनरुत्थान की। और पॉल क्या करेगा? मूल रूप से अध्याय 15 में वह करने जा रहा है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन वह केवल दो प्रमुख बातों पर बहस करता है। नंबर एक यह है कि वह कुरिन्थियों से कहता है, यदि आप शारीरिक पुनरुत्थान से इनकार करते हैं तो आप इस बात से इनकार करते हैं कि मसीह शारीरिक रूप से मृतकों में से जी उठे थे, और इसके गंभीर निहितार्थ हैं। पौलुस कहेगा, यदि यह सच है तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। और मैं लोगों को यह बताना पसंद करता हूँ कि यदि कोई मुझे संदेह की छाया से परे यह साबित कर सके कि यीशु मसीह मृतकों में से नहीं उठे थे, तो मैं अपनी ईसाई धर्म को खत्म करने वाले पहले लोगों में से एक होऊंगा। और पॉल मूलतः यही कह रहा है, यदि यीशु ने आपको मृतकों में से नहीं उठाया तो आप अभी भी अपने पापों में हैं, आप अभी भी अपने पापों में मरे हुए हैं, तुम्हें कोई आशा नहीं है। ईसा मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान के बिना ईसाई धर्म नकली है, तो वह पहली चीज है जो वह कहते हैं। शारीरिक पुनरुत्थान को नकार कर कुरिन्थियों को मसीह के पुनरुत्थान को भी नकारना होगा, और इसका उनके विश्वास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। लेकिन दूसरी बात जो वह तर्क देते हैं वह यह है कि अंतिम दुश्मन को हराने के लिए शारीरिक पुनरुत्थान होना चाहिए, और वह आखिरी दुश्मन है मौत। इसलिए पॉल यह स्पष्ट करता है कि पराजित होने वाला अंतिम शत्रु मृत्यु है, और यदि मृत्यु को पराजित करना है तो उसके लिए न केवल आध्यात्मिक पुनरुत्थान की आवश्यकता है बल्कि भौतिक पुनरुत्थान की भी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि इस परिच्छेद पर चिंतन करने से हमें कभी कभी ईसाई होने के अर्थ और हमारी भविष्य की आशा के बारे में हमारी कुछ अवधारणाओं पर पुनर्विचार करने और चुनौती देने में मदद मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पॉल स्पष्ट है कि हमारे उद्धार और हमारी भविष्य की आशा में एक भौतिक सांसारिक तत्व शामिल है। समझे जाने के जोखिम पर मैं लोगों से कहता हूँ, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ, और आशा है आप भी नहीं हैं। जब मैंने 1 कुरिन्थियों 15 को पढ़ा तो मेरी अंतिम नीति कोई स्वर्गीय अस्तित्व नहीं है जो वीणा बजाते हुए बादलों में तैर रहा हो। मेरा मतलब है कितना उबाऊ अस्तित्व है अगर स्वर्ग ऐसा ही है। लेकिन पॉल उत्पत्ति अध्याय 1 से आश्वस्त है, मानवता की रचना, भगवान ने हमें भौतिक पृथ्वी पर भौतिक प्राणियों के रूप में रहने और अस्तित्व में रहने के लिए बनाया है। और इसलिए पॉल फिर से स्वाभाविक रूप से कल्पना करता है कि हमारा अंतिम अस्तित्व भौतिक शरीर से निकलने वाला सारहीन हिस्सा नहीं है। वह एक गूढ़ ज्ञानवादी प्लेटोनिक प्रकार का विचार था, लेकिन हमारे उद्धार में केवल हमारी आत्माओं को बचाना शामिल नहीं है। कुछ शब्दजाल जो हम अक्सर ईसाई धर्म में उपयोग करते हैं वह हमारी आत्माओं को बचाने के लिए है। यह न केवल मेरी आत्मा या आत्मा को बचा रहा है बल्कि मेरे शरीर को भी बचा रहा है। इसलिए पॉल हमारे उद्धार के एक आवश्यक भाग के रूप में शारीरिक पुनरुत्थान के लिए तर्क देता है। और जैसा कि हम रहस्योद्घाटन तक पहुंचने पर देखेंगे, यह दिलचस्प है। प्रकाशित वाक्य के अंतिम 2 अध्याय हमें स्वर्ग में नहीं बल्कि एक नई पृथ्वी पर पहुंचाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अध्याय 15 हमें ईसाई अस्तित्व के बारे में हमारी समझ और वर्तमान और भविष्य में इसका क्या अर्थ है पर पुनर्विचार करने की चुनौती देता है। हमारे लिए भगवान का इरादा हमेशा भौतिक अस्तित्व का रहा है। हाँ, यह बहुत अलग होगा, पाप और मृत्यु के सभी प्रभावों से रहित, लेकिन फिर भी यह एक भौतिक शारीरिक अस्तित्व होगा। और पॉल आश्वस्त है कि यही मामला है, और 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 में इसके लिए तर्क देता है। ठीक है, 1 कुरिन्थियों का विषय क्या है? और वह हमेशा खतरनाक होता है। मुझे नहीं पता, मुझे खतरनाक नहीं कहना चाहिए। कभी कभी किसी पुस्तक को एक विषय तक सीमित करना आवश्यक नहीं हो सकता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसी पुस्तक में एक से अधिक विषय वस्तु न हो या लेखक एक ही समय में एक से अधिक चीजें पूरा करने का प्रयास कर रहा हो। लेकिन अगर मैं कर सकता था तो मैं सोचता था कि मुख्य विषय चर्च की एकता थी, क्योंकि कोरिंथियंस में कई समस्याएं असमानता, सामाजिक वर्गों के इस विचार और चर्च में विभाजन का कारण बनने वाले अभिजात्यवाद से उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं और अधिक आश्वस्त हो गया हूं कि मुख्य विषय शायद धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के बीच चर्च की शुद्धता है। कोरिंथियंस की सभी समस्याएं धर्मनिरपेक्ष कोरिंथियन संस्कृति के मूल्यों, दृष्टिकोण और नैतिकता को चर्च में घुसपैठ करने की अनुमति देने से उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं, और इसी वजह से इनमें से कई समस्याएं सामने आईं। पॉल की लगातार प्रतिक्रिया, जहां वह अक्सर चर्च की तुलना एक मंदिर और कोरिंथ में भगवान के पुराने नियम के लोगों से करता है, उसकी लगातार प्रतिक्रिया चर्च के लिए शुद्धता का पीछा करने की है। और जिस धर्मनिरपेक्ष संस्कृति में वे रहते हैं उसके बीच पवित्र बने रहना। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मुझे कुरिंथियों के लिए एक विषय चुनना हो तो यह बुतपरस्त संस्कृति के बीच चर्च की पवित्रता होगी, जिसमें यह खुद को पाता है। और फिर सारी समस्याएं उसे चर्च में घुसपैठ करने की अनुमति देने से उत्पन्न होती प्रतीत होती हैं। ठीक है, मैं तुम्हें परीक्षा के लिए बुधवार को मिलूंगा। नहीं, वह एक और वर्ग है। यह डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं, जो अपने नए नियम के इतिहास और साहित्य पाठ्यक्रम 1 कुरिंथियों और आध्यात्मिक उपहारों पर व्याख्यान 17 में हैं।